وكفى وسلم على الذين اصطفى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم ورضوا عنه، ذلك لمن خشي ربه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، وطلبنا علما. تو ہم خلفائے راشدین کا سلسلہ آج کل پڑھ رہے ہیں، سیرت خلفائے راشدین، اور اس میں ہم عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے متعلق پڑھ رہے تھے. آخری کلاس میں آخری بات اگر تو نہیں تیار ہے ریحان، آپ ریحان
صحابہ کو مستر کے روح میں، تو وہاں پر ان کو کہتا ہے ابھی کوئی بڑی بہت وسط کی بات، تو رضی اللہ عنہ ابو بکر کو شکریہ.
ٹھیک، جزاک اللہ صحیح. آپ کے جواب سے یاد آیا کہ مجھے ان کا نام چیک کرنا تھا، لیکن ذہن سے نکل گیا. بالکل، ان کا نام کیا تھا جو مصر کے گورنر تھے، کسی کو اگر پتہ ہے؟ تو عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے حکومت کا دوسرا دور شروع ہو چکا، یعنی ان کی حکومت کو امن، ویسے تو ایک ہی دور تھا، یہ نہیں تھا کہ بیچ میں کوئی گیپ آیا تھا، حکومت ان کی ختم ہو گئی تھی پھر تھوڑے دن کے بعد دوبارہ حکومت بنی تھی، تو وہ دوسرا دور ایسا نہیں تھا، کنٹینیویشن کے اندر ہی ان کی حکومت چل رہی تھی. لیکن بڑا فرق تھا ایک شروع کے زمانے میں اور دوسرے زمانے میں. شروع کے زمانے میں فتوحات ہی فتوحات، ایکسپینشن ہی ایکسپینشن، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جو گورننس تھی، جو انہوں نے ادارے بنائے تھے، نظام بنائے تھے، وہی جو ہے وہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ آگے جاری رکھے ہوئے تھے، اور بہت بہترین زمانہ گزر رہا تھا. لیکن پھر اس کے بعد کچھ مسئلے شروع ہوئے، اور وہ مسئلے ایسے تھے کہ جو کہ الٹیمیٹلی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے اوپر جا کر کے ختم ہوئے. ٹھیک ہے، تو وہ ہم نے مسائل سلسلہ پڑھنا شروع کر دیا تھا کہ واقعہ یہ پیش آیا کہ جو وہ مصر کے گورنر تھے ان کی تھوڑی سی شکایتیں وغیرہ آ رہی تھیں، ذرا سخت تھے، ہیوی ہینڈڈ تھے. تو عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے فیصلہ کیا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ایک بیٹے تھے محمد بن ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، تو ان کو جو ہے وہ وہاں کا گورنر بنا کر کے بھیج دیا جائے. تو انہوں نے جب سفر کا فیصلہ کیا تو لوگوں میں اعلان کیا کہ بھئی میں جا رہا ہوں، تو کوئی میرے ساتھ اگر چلنا چاہے تو چلیں. بہت سارے لوگ جو ہیں وہ تیار ہو گئے، اچھے خاصے صحابہ ان کے ساتھ سفر کے لیے تیار ہو گئے. تو وہ سفر پہ نکلے تو راستے میں نا ایک عجیب سا واقعہ پیش آیا کہ لوگوں نے دیکھا کہ ایک حبشی غلام اونٹ کے اوپر بہت تیزی کے ساتھ جو ہے نا وہ چلا جا رہا ہے. تو لوگوں کو عجیب سا لگا کہ مدینہ منورہ سے نکل کر کے یہ کس طرف ہماری ڈائریکشن میں جا رہا ہے، جس ڈائریکشن میں ہم جا رہے ہیں یعنی مصر کے ڈائریکشن میں. تو لوگوں نے اس کو روکنے کی کوشش کری، لیکن وہ رکنے کی بجائے جو ہے نا وہ اور تیز بھاگنے کی کوشش کرتا رہا. تو لوگوں کو اور زیادہ خدشہ ہوا کہ بھئی یہ کیا کچھ عجیب سی بات لگ رہی ہے. تو لوگوں نے اس کو بالآخر پکڑا اور اس سے پوچھا کہ بھئی کہاں جا رہے ہو، تو اب وہ سیدھا جواب بھی نہیں دے رہا کہ میں کہاں جا رہا ہوں، وہ کچھ نہیں بتا رہا نا. تو لوگوں کو بہت شک ہوا کہ بھئی کچھ نہ کچھ جو ہے وہ مسئلہ ہے. تو وہ اس کو پکڑ کر کے حضرت محمد بن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لے آئے. ٹھیک ہے، وہاں پر انہوں نے اس کی مزید تفتیش کری، وہی آئے بائیں شائیں کرتا رہا، بالآخر جو ہے نا اس کی تلاشی لی گئی. تو اس کے پاس سے جو ہے وہ ایک خط نکلا، اور وہ خط جو تھا وہ تھا مصر کے جو موجودہ گورنر تھے ان کے نام تھا، فروم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے، اور اس کے اوپر باقاعدہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی جو خلافت والی مہر ہوتی ہے، سٹیمپ ہوتی ہے، وہ بھی لگی ہوئی تھی. جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی خط لکھتے تھے نا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مہر نبوت تھی انگوٹھی کے اندر، وہ اس کو اس کے اوپر پیش کیا کرتے تھے. تو یہ ایک نظام تھا، تو ہر خلیفہ جب بھی کوئی ایسا خط لکھتے تھے تو وہ مہر لگا کر کے، تو ان کے اس خط کے اوپر مہر بھی لگی ہوئی تھی، اور اس میں لکھا ہوا یہ تھا ये जो मोहम्मद बिन अबू बकर आ रहे हैं ना मिस्र, तो तुम जो है ना वो इनको कत्ल कर दो, ठीक है, और कोई जरूरत नहीं है हुकूमत देने की इनको, इनके हवाले करने की, इनको कत्ल कर दो, तुम अपनी हुकूमत को संभालो और इसी को कंटिन्यू कर। अब ये जो खत लोगों ने देखा, मोहम्मद बिन अबू बकर ने देखा रज़ियल्लाहु तो हैरान परेशान कि ये क्या हो गया। उस्मान गनी ने मुझे मुझे तो बाकायदा अपॉइंटमेंट लेटर दे करके भेजा है कि वहां जाकर के तुम जो है वो टेक ओवर करो हुकूमत को, और यहाँ पर जो है वो एक गुलाम को भेज रहे हैं कि मुझे कत्ल करने का। तो उन्होंने कहा, लोगों ने कहा कि ये ना ये कोई गड़बड़ है, बहुत सीरियस किस्म की ये साजिश लग रही है, कंस्पिरेसी लग रही है, तो हमें आगे जाने की बजाय हमें वापस मदीना मुनव्वरा जाना चाहिए। तो वो सारे के सारे मदीना मुनव्वरा वापस लौटे और उस्मान के पास पहुंचे कि ये आपने क्या किया कि मेरे कत्ल का हुक्म दे दिया, इसकी क्या जरूरत थी। तो उस्मान ने जवाब दिया कि मैंने तो कोई हुक्म नहीं दिया। उनका भाई ये लेटर है, इस लेटर के ऊपर आपकी स्टैंप लगी हुई है, और वो गुलाम क्या वो गुलाम आपका गुलाम नहीं है। उन्होंने कहा हाँ मेरा ही गुलाम लग रहा है, और वो जो ऊंट ये आपका ऊंट नहीं है, हाँ ये तो मेरे ही ऊंट लग रहा है। तो फिर आप कैसे डिनाई कर सकते हैं कि ये खत आपने नहीं लिखा। तो उन्होंने जवाब दिया कि भाई तुम लोगों को पता है कि मेरे इतने सारे गुलाम होते हैं, उस्मानी सल्तनत के बारे में तो शुरू से हमें पता है कि इतने अमीर कबीर, इतना जबरदस्त किस्म के वो बिजनेसमैन थे, तो हजारों गुलाम हजारों ऊंट ये सब तो उनके लिए बहुत आम सी बात थी। कभी मेरे इतने गुलाम होते हैं, इतने मेरे ऊंट होते हैं, हत्ता कि मेरा जो काम है वो इतना बड़ा काम है कि मैं हर कोई हर काम जो है वो खुद को थोड़ी कर सकता हूँ। तो मेरे जो सबॉर्डिनेट्स हैं तो वो भी जो है ना वो गुलामों को कामों से भेज देते हैं और ऊंट के ऊपर सवार होकर के भेजते रहते हैं, ये तो नॉर्मल सी बात है मेरे यहाँ। लेकिन मैंने नहीं भेजा है इस बंदे को, और ये खत भी जो है वो मैंने नहीं लिखवा लिखा है और मैंने नहीं लिखवाया, ठीक है। तो अब उन्होंने कहा अच्छा, उन्होंने कसम भी खाई कि भाई मैंने अल्लाह की कसम मैंने नहीं लिखा है ये वाला। तो लोगों ने कहा अच्छा ठीक है, आपने ये तो कसम खा ली है, आप फरमा रहे हैं कि नहीं लिखा है, मैं आपकी बात के ऊपर यकीन आ गया, लेकिन किसी ने तो लिखा है ना राइट, और उस शख्स के पास आपकी स्टैंप कैसे आई। तो इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि जिस किसी ने भी ये हरकत करी है, ही इज समवन वेरी क्लोज टू यू, आपके बहुत करीब का कोई बंदा है जिसके पास एक्सेस है ना, जैसे आप स्टैम्प जो है वो हर रोज जेब में रख कर खिंदनी चलते हैं ना, ऑफिस के अंदर आप रख देते हैं इस किस्म की जितनी चीजों को, और आपके आपके वहमो गुमान में भी नहीं होता कि कोई इसको ऐसे अब्यूज कर सकता है, मिस यूज कर सकता है। तो कोई ऐसा बंदा था जिसके पास आपके कमरे का एक्सेस था, ऑफिस वगैरह टाइप का कमरा, और उसने वहां से स्टैम्प ले करके खत लिखवाया भी है या लिखा भी है और उसके ऊपर स्टैम्प भी लगाई। तो अब ये कौन हो सकता है। तो उन लोगों को शक हुआ कि उस्मान रतान के इतना करीब जो था ना, वो उस्मान रतान का एक रिश्तेदार था जिसका नाम था मरवान, ठीक है, तो उसके पास ऐसा एक्सेस है वो ये हरकत कर सकता है। लोगों को उसके ऊपर बड़ा शक हुआ, तो उन्होंने उस्मान रतान से कहा कि मरवान को आप हमारे हवाले कर दें, हम उससे तहकीक करेंगे, इन्वेस्टिगेशन करेंगे और उससे ना हकीकत को मालूम करेंगे। तो उस्मान रतान ने फरमाया कि भाई ये खलीफा तो मैं हूं, तो ये जो काम है इन्वेस्टिगेशंस करने का, तफ्तीश करने का, तो ये तो काम मेरा करने का काम है ना। तो भाई तुम लोगों ने बैत करी है, खिलाफत की बैत करी है, सभी करते थे, करने के बगैर तो ये इस तरह नहीं मामला होता था कि कोई खलीफा बन गया। तो लोगों ने बैत करी है, लोगों ने आपके ऊपर यानी आपको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है खिलाफत की, और खिलाफत का मतलब यही है कि पोलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन सारा का सारा उन्होंने देखना है। तो जब तुमने मुझे खलीफा बनाया है तो अमर बिन आस नहीं थे उनका, हाँ अब्दुल्ला बिन साद बिन अबी सर, रिप्लेसमेंट बाय उस्मान रतन, हाँ जजाकुमुल्लाह, अब्दुल्ला बिन साद बिन अबी सर, ठीक है। तो अच्छा ये थे भी उस्मान रतन के जो है ना वो दूध शरीक भाई यानी कजन थे या भाई थे इस तरह के। तो इनका बताया भी था कि ये पहले मुसलमान हुए, फिर उसके बाद जो है उन्होंने ये मुर्तद हो गए थे, और फिर फतेह मक्का के मौके पर नबी अलैहिस्सलाम ने इनके कत्ल का हुक्म जारी किया था कि इनको कहीं भी नहीं, कहीं भी मिले इनको छोड़ना नहीं, ये उन लोगों में से थे। लेकिन फिर उस्मान गनी उन्होंने इनकी तद बिहाफ के ऊपर जाकर के बहुत सिफारिश करी थी नबी अलैहिस्सलाम से, तो नबी अलैहिस्सलाम ने इनको माफ कर दिया था। और फिर ये मुसलमान होकर के दोबारा से, ठीक है, तो सहाबी बन गए थे क्योंकि नबी अलैहिस्सलाम के सामने ही मुसलमान हो गए, तो दोबारा सहाबी बन गए। बहरहाल इनका इतना बड़ा मसला नहीं था भाई, होते हैं उमर रतान भी जो है उधर हार्ड हैंडेड थे, सख्त थे, तो ये भी जरा सख्त थे। तो अब जो है ना उस्मान ने तो फरमाया कि भाई मैं तुम्हें जो है ना मरवान को तुम्हारे हवाले कैसे कर दूं, क्या ये काम तो मेरे करने का है। उनको इस बात का भी डर था कि ये लोग इतना गुस्से में हैं कि ये तो मरवान को जो है ना वो मरवा के छोड़ेंगे, यानी मार के छोड़ेंगे, ये तो इसको नहीं छोड़ने वाले हैं ना, ठीक है, तो एक नया मसला खड़ा हो जाएगा कि बंदा मर गया और वो भी मुसलमानों में से, वो भी जो है वो ऐसे करीबी लोगों में से। तो उन्होंने इनकार कर दिया कि नहीं मैं खुद तफ्तीश करूंगा, मुझे तुम थोड़ा सा टाइम दो, 10 दिन लगे, महीना लगे, हफ्ते लगे, लेकिन मैं करूंगा तफ्तीश, और फिर अगर ये हुआ साबित कि इसी ने वाली हरकत करी है तो फिर उसको मैं सजा दूंगा या तुम्हारे हवाले कर दूंगा, बल्कि किताब में तो ये लिखा है कि मैं तुम्हारे हवाले कर दूंगा, फिर तुम उसको सजा दे देना, ठीक है। लेकिन उनसे जो है ना वो सब्र नहीं हो रहा था, उन लोगों से सब्र नहीं हुआ, वो बड़े बिखरे हुए थे उस वक्त, ठीक है। तो उन लोगों ने जो है ना मुतालबा अपना जारी रखा कि नहीं आप हमें हवाले करें, हम इससे जो है वो इन्वेस्टिगेशन करेंगे, हम इसको सजा देंगे अगर ये हो गया कि भाई इसी ने ये वाली हरकत करी है। लेकिन उस्मान अली रज़ियल्लाहु अन्हु उन्होंने उसको हवाले नहीं किया, ठीक है। तो अब उन लोगों ने शोर मचाना शुरू किया और बहुत लंबी फिर इसके अंदर तफसील है कि कहाँ कहाँ जो है वो उन्होंने शोर मचाया उस्मान अली रज़ियल्लाहु अन्हु को, जो है वो मस्जिद मस्जिद नबी के अंदर जब खुतबा दे रहे थे उस वक्त खुतबा नहीं देने दिया, और चलता रहा ये मामला, हत्ता कि ये चीज इतनी ज्यादा बढ़ गई कि इन लोगों ने, जिनकी तादाद जो थी वो सिर्फ 150 लोग थे, 150 लोग थे, ठीक है। तो इन्होंने जो है ना उस्मान गनी रतान के घर का बाकायदा मुहासरा कर लिया, यानी उसको, ठीक है, उसका चारों तरफ से उसको सराउंड कर लिया। तो अब जब इन्होंने मुहासरा कर लिया और ये 150 लोग थे, 150 लोग वैसे तो लगता है ज्यादा लोग होंगे लेकिन बहुत ज्यादा नहीं, हम लोग यहाँ जितने बैठे हुए हैं अभी राजस्थान में ये 50 के करीब तो इधर ही हो गए होंगे, तो इसमें आप थोड़ा सा और ऐड कर लें तो 150 लोग बन जाते हैं, तो इतने थोड़े से लोग थे। लेकिन ये जो है ना वो वहां से टल नहीं रहे थे। अच्छा, इनमें सारे जो है वो कुछ लोकल भी थे और ज्यादातर लोग जो है ना वो बाहर के थे, जैसे मिस्र के या यमन के या इराक के, ये मेजर तीन प्रोविंसेस थे जहां पे कि इस्लामी हुकूमत फैल चुकी थी, यमन और इराक और मिस्र, ठीक है, ये इन इलाकों के ज्यादा लोग थे इनके अंदर। तो जो मदीना मुनव्वरा में सहाबा इकराम थे, सीनियर लोग थे, उन्होंने आकर के तो दुश्मन से फरमाया कि भाई आप तो इतने बड़े हमारे खलीफा हैं और आपके पास इतनी सारी फौजें हैं, आपने माशाल्लाह कहाँ कहाँ रोम और पर्शिया को जो है फतह किया है, उनके इतने बड़े बड़े इलाकों को, तो आप हमें हुक्म दें, ये 1500 बंदे तो किसी काम के ही नहीं, इनको तो हम ऐसे ही खड़का देंगे, ठीक है ना, इनका मुहासरा जो है वो खत्म कर देंगे। लेकिन उस्मान गनी अतान ने जवाब दिया कि नहीं, मदीना मुनव्वरा के अंदर मैं कोई फसाद नहीं चाहता, ये लोग जो है ना वो आपस में लड़े हैं तो सारे मुसलमान, कोई काफिर कोई थोड़ी है, कलमा गो हैं, कम ज़ाहरी तौर पर तो सारे अपने आप को मुसलमान ही साबित कर जाहिर करते हैं, तो मैं जो हूँ ना वो किसी किस्म का कोई फसाद यहाँ पर नहीं चाहता, ये मेरी अपनी जात का मसला है, इनको मेरे साथ जाती एक मसला हो गया है, तो बस ये मैं अपनी जात की वजह से किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, ठीक है। तो ये लोग, इनके लिए एक बड़ा उर्दू जुबान के अंदर लफ्ज बलवाई का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, यानी फसादी बलवाई ऐसे लोग थे ना ये। अच्छा, इन्होंने मुहासरा कर लिया और हत्ता के उस्मान रतान के घर तक जो है वो इवन पानी तक नहीं पहुंच पा रहा था ना, आप चला दे तो तकलीफ हो जाती। तो जब ये काफी लंबा हो गया और अंदर जो है वो खाना भी नहीं पहुंच रहा, पानी भी नहीं पहुंच रहा, तो एक दिन उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपने घर की दीवार के ऊपर से ना सर गली की तरफ निकाला, यानी थोड़ा सा ऊंचा जैसे कोई स्कूल स्कूल पे चढ़ करके बाहर की तरफ आप देखते हैं, और पुकारा के यहाँ पे तलहा मौजूद है, ठीक है, तलहा रज़ियल्लाहु अन्हु अशरफ मुबशरा साहब में से। तो लोगों ने जवाब दिया कि नहीं, तलहा तो यहाँ पर नहीं है। अच्छा, जुबैर मौजूद है, तो जवाब दिया कि नहीं, जुबैर भी यहाँ पे मौजूद है। फिर पूछा कि अच्छा अली मौजूद है रजी अल्लाह ताला, ठीक है, तो अली रतान जो है वो वहां पर कहीं करीब में मौजूद थे, तो उन्होंने जवाब दिया कि हाँ उस्मान गनी पर मैं मौजूद हूँ यहाँ। तो उस्मान गनी रतान ने फरमाया कि अली आप ही बताओ कि क्या मैंने मुसलमानों के ऊपर इतना माल खर्च नहीं किया कि मैंने एक कुआं जो है वो 20,000 दिरहम के अंदर खरीद करके मदीना मुनव्वरा लाओ के लोगों के लिए वक्फ कर दिया था, और मैंने ऐसे मौके के ऊपर इतना माल नहीं खर्च किया, और इतने जो है वो मैंने गुलामों का आजाद नहीं किया, ठीक है, तो ये सब कुछ मैंने किया, लेकिन आज मेरे साथ क्या कर रहे हो ये लोग कि 3 दिन से मेरे घर तक पहुंच पानी तक नहीं पहुंच सका, ठीक है। तो अली रतान ने जब ये सुना, जाहिर है वो सारी चीज पता नहीं होती है ना कि क्या एग्जैक्टली क्या हो रहा है, कोई ऐसी कम्युनिकेशन का सिलसिला तो जमाने में था नहीं कि भाई मैसेजेस भेज रहे हैं वगैरह। तो अली रतानों ने ये बात सुन करके ना फिर अपने खादिमों को हुक्म दिया कि तुम जो है ना वो पानी के मशकीजे उस्मान गनी रतान तक पहुंचाओ, ठीक है। तो जब अली रतान के खादिम या गुलाम थे तो वो पानी के मशकीजे, मशकीजे यानी बड़े बड़े जो पानी के वो लेदर के बने हुए होते हैं, तो वो लेकर के गए, तो इन बलवाइयों ने उनसे ही लड़ना शुरू कर दिया, हत्ता के कुछ गुलामों को जो है वो कत्ल ही कर दिया, लेकिन बिलाखिर थोड़ा सा पानी जो है उस्मान गनी रतान के घर में पहुंच गया। अच्छा ये सिलसिला जो है वो चलता रहा, हत्ता कि कोई सहाबी आए और हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम रज़ी अल्लाह अन्हु का लिखा है, अब्दुल्ला बिन सलाम जो कि यहूदी थे फिर बाद में मुसलमान हो गए, तो बड़ी लंबी उनकी वही वाली जो अजवा खजूर का सारी कहानी है ना उनकी, तो उस हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम रज़ी अल्लाह अन्हु उस वक्त हयात थे, इन लोगों में मोहम्मद बिन अबू बकर ही मौजूद थे, हाँ वो भी अभी भी नौ इनके दरमियान ही मौजूद थे। तो अब्दुल्ला बिन सलाम रतान आए और उन्होंने उस्मान रतान को मशवरा दिया, आप ऐसा करें ना कि हम आपको निकाल लेते हैं यहाँ से, आप मदीना मुनव्वरा छोड़ करके मक्का मुकरमा चले, ठीक है, तो वहां पर ये लोग नहीं आ सकेंगे और मक्का मुकरमा जो है ना वो लोग आपकी हेल्प करेंगे, आपको प्रोटेक्ट करेंगे, तो ये मसला खत्म हो जाएगा। तो उस्मान रतान ने जवाब दिया कि नहीं, मैं एक दफा मक्का मुकरमा से मदीना मुनव्वरा हिजरत करके आ चुका हूँ, अब मैं वापस हिजरत नहीं करना चाहता मक्का, क्योंकि ये भी एक तरह की हिजरत हुई ना कि अपनी जान को, अपने माल को, अपनी इज्जत को, आबरू को बचाने के लिए मदीना मुनव्वरा छोड़ करके आप मक्का मुकरमा चले जाएं, तो मैं ये रिवर्स हिजरत नहीं करना चाहता, तो मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगा। तो अब्दुल्ला बिन सलाम रतानों ने फिर दूसरा मशवरा ये दिया कि भाई फिर ऐसा करें कि इस मसले को खत्म करें, आप जो है ना वो स्टेप डाउन हो जाए, खिलाफत को छोड़ दें, ठीक है ना, हम कोई दूसरा खलीफा चुन लेते हैं, अब ये लोग इतना फसाद कर रहे हैं, आप जो है वो हमें इनसे लड़ने भी नहीं दे रहे, इनको मार के भगाने भी नहीं दे रहे, आप जो है वो यहाँ से मक्का मुकरमा जाने के लिए भी तैयार नहीं है, तो आप ऐसा करें ना खिलाफत फिर छोड़ दें, तो इस तरह से मसला हल हो जाएगा। उसके ऊपर उन्होंने अजीब बात फरमाई कि मुझे मेरे आका मेरे महबूब हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिया था कि उस्मान तुम्हें एक पोशाक पहनाई जाएगी, ठीक है, पोशाक जैसे इस तरह की एक आउटर कवरिंग है तुम्हें पहनाई जाएगी, और लोग तुमसे कहेंगे कि तुम उसको उतार दो, लेकिन तुम मत उतार, ठीक है, तुम मत उतारना उसको। अब मुझे बाकायदा नबी अलैहिस्सलाम की तरफ से ये हुक्म मिल चुका है, और उस पोशाक की यानी ऊपर से जो पहनी हुई चीज होती है उसकी मैं यही ताबीर करता हूँ कि ये खिलाफत की पोशाक मुराद थी नबी अलैहिस्सलाम, ठीक है ना, तो अब चूंकि मुझे आप आका अलैहिस्सलाम ने ये हुक्म दिया हुआ है, मैं तो अब इसके खिलाफ कर ही नहीं सकता कि मैं खिलाफत जो है उतार के किसी और के हवाले कर दूं, ठीक है, तो उन्होंने ये वाली तजवीज भी जो है वो नहीं मानी, हत्ता कि ये चलता रहा, और जो अकाबिर सहाबा थे तो उन्होंने ना फिर कहा कि भाई उस्मान गनी रतान जो है वो हमारी हेल्प तो ले नहीं रहे, बल्कि उल्टा हमें हुक्म दे दिया कि आप सब लोग यहाँ से चले जाओ बस, ठीक है ना, यानी जो हेल्पर्स थे ना जो फेथफुल लोग थे उनको कहा कि आप लोग यहाँ से चले जाओ, बस जी चले जाओ, घर चले जाओ, बस जस्ट लीव इट, ठीक है, और वो बलवाई जो है वहां पर मुहासरे में थे, तो उन्होंने एक मशवरा किया कि ऐसा करते हैं कि हमें तो हुक्म मिला है कि हम चले जाए ना, तो अब खलीफा साहब का हुक्म मानना भी जरूरी है, लेकिन हम ना अपने बेटों को यहाँ पे हिफाजत के लिए खड़ा करते हैं, ठीक है। तो अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने हजरत हसन रजी अल्लाह तआला अन्हु और हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु को गार्ड के तौर पे खड़ा कर दिया, और हजरत जुबैर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने अब्दुल्लाह बिन जुबैर रजी अल्लाह तआला अन्हु को बतौर एक गार्ड के वहां पे खड़ा कर, ठीक है। तो वो दरवाजे के ऊपर बाकायदा गार्ड करना शुरू हो गए कि किसी को जो है वो दरवाजे से गुजर के अंदर नहीं आने देंगे, क्योंकि अब जो है ना ये बात नजर आनी शुरू हो गई थी कि इन लोगों का जो है वो इनकी इरादे बहुत खराब हैं, नीयत इनकी खराब हो चुकी है, उस्मान ने तो जो है वो शहीद करना चाहता है, ठीक है। तो फिर लोगों ने जो जो करीबी लोग थे और दोस्त थे, तो उन्होंने उस्मान गनी अतान को एक दफा फिर ये मैसेज भेजा कि भाई आप बाहर आ जाएं, हम आपकी हिफाजत करते हैं, ठीक है, और इन 150 बंदों को हम देख लेंगे, कोई मसला नहीं है इन लोगों को देखना, ठीक, यानी इन लोगों से निमटना कोई मसला नहीं है। लेकिन उस दिन उस्मान गनी अतान ने फरमाया कि मैंने रात में नबी अलैहिस्सलाम को ख्वाब में देखा है, ठीक है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझसे फरमा रहे थे कि उस्मान मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं, तुमने जो रोजा रखा है ना, यानी सुबह के वक्त रात गुजर गई तो रोजा रख लिया, सहरी कर ली, तो ये रोजे से थे, सोए, नबी अलैहिस्सलाम की ज़ियारत हुई और उन्होंने फरमाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि उस्मान तुम आज का रोजा मेरे पास आकर के इफ्तार करो, मैं तुम्हारा इंतजार करूं, ठीक है। तो उस्मान ने फरमाया कि मुझे तो नबी अलैहिस्सलाम पहले ही बता करके गए थे कि मैंने शहादत पानी है, ठीक है। जब बहुत पहाड़ के ऊपर एक दफा नबी अलैहिस्सलाम हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला और उमर रजी अल्लाह तआला और उस्मान रजी अल्लाह तआला वहां पे खड़े हुए थे, तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया था कि हाँ बहुत हिलना शुरू हो गया था इन लोगों की ना, यानी दहशत से, इनके लोगों की रोब से, दहशत तो नहीं कहना चाहिए, रोब से बहुत लरजना शुरू हो गया था। आपने फरमाया था क्यों लरजते हो, तुम्हारे ऊपर एक नबी, एक सिद्दीक और दो शहीद खड़े हुए, क्यों लरजते हो, ठीक है। तो उस्मान ने रज़ी अल्लाह को नबी अलैहिस्सलाम ये चीजें बता चुके थे कि तुम्हें शहीद किया जाएगा, उमर को भी ये बात बता कि उनको भी शहीद किया जाएगा, ठीक है। तो पता तो मुझे था, लेकिन आज इस ख्वाब के बाद मुझे यकीन हो गया है कि मुझे आज ही शहीद किया जाएगा, ठीक है। तो फिर हुआ ये कि ये लोग जो मुहासरा किए हुए थे घर का, अब ये कोशिश कर रहे थे अंदर घुसे, लेकिन वहां पर जो है वो हुसैन हुसैन रतान, हसन रतान और अब्दुल्ला बिन जुबैर रतान खड़े हुए थे। तो इन्होंने क्या किया कि पड़ोस का एक घर था, किसी अंसारी का घर था, वो उसके अंदर दाखिल हो गए, वहां तो नहीं था कोई प्रोटेक्शन, ठीक है, तो वो उसके अंदर दाखिल हुए, उसकी दीवार पे चढ़े और दीवार फलांद करके जो है ना वो उस्मान गनी रतान के घर के अंदर दाखिल हो, ठीक है। उस्मान गनी नजर तारन उस वक्त घर के अंदर कुरान मजीद खोले हुए उसकी तिलावत कर रहे थे। इन लोगों में हजरत मोहम्मद बिन अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु भी शामिल, वो भी यहाँ पे मौजूद थे और उनके अलावा तीन चार और लोग थे, ठीक है। तो वहां पर उस्मान गनी रजी अल्लाह की जो है वो बीवी उस वक्त जो थी वो नाइला रजी अल्लाह तआला अन्हा थी, क्योंकि पहली दो बीवियों को तो इंतकाल हो चुका था, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियां थी, तो ये नाइला तआला भी वहां पे मौजूद थी, तो इन्होंने भी इन लोगों को देखा, ठीक है। तो ये लोग उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला के पास पहुंचे और इनमें से, अच्छा, मोहम्मद बिन अबू बकर इन्होंने जो है ना वो उस्मान गनी तआला से जरा सख्त सख्त कलामी शुरू करी कि आपने ये कैसे किया, क्यों किया आपने ये, कि आपने मुझे उधर भेजा और आपने जो है वो ये किया, फिर उसके बाद जो है वो हमने आपसे दुश्मन को मांगा, वो भी आपने हमारे हवाले, यानी जरा वो लाउड होने शुरू हो गए, गुस्से में थे, ठीक है। तो उस्मान गनी तआला ने उससे उस वक्त कहा कि मोहम्मद तुम जरा सोचो कि अगर तुम्हारी जगह तुम्हारे बाप होते हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला तो क्या वो मुझसे इस तरह से बात करते, राइट, क्या वो मुझसे इस तरह से बात करते। तो ये जो उनका जुमला था ना, ये अबू बकर, ये मोहम्मद रजी अल्लाह तआला के दिल को जा करके लगा, ठीक है ना, भाई बाप का रेफरेंस और वो भी अबू बकर सिद्दीक तआला जैसे बाप का, ठीक है, उनको ये चीज बहुत सख्त लगी, वो उसी वक्त जो है ना वो वहां से मुड़े और बाहर निकल चले गए, ठीक है। अब बाकी जो तीन वहां पे लोग रह गए थे ना, वो कोई आउटसाइडर्स थे, वो मदीना मुनव्वरा के रहने वाले नहीं थे। उन्होंने उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु को जो है वो मारा। किताब में लिखा है कि एक ने उनमें से जो है ना वो एक खंजर जो है वो लेकर के ऐसे जो है उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु के माथे के अंदर फूंक दिया, ठीक है। और दूसरी किताब में ये भी लिखा है कि एक लोहे की सलाख टाइप की कोई चीज थी, उसको लेकर के उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु के सर के ऊपर इतना जोर से मारा कि सर फट गया, ठीक है। और उनके जो खून के कतरे निकले हैं ना, ठीक है, सोचे कैसा खून निकला होगा। वो खून जो है वो कुरान मजीद के ऊपर जाकर के गिरा। आम शहीद होता है उसका खून जमीन के ऊपर गिरता है, और इनका खून जो है वो कुरान मजीद के ऊपर गिरा। हत्ता कि यहां तक है कि जो आयत वो पढ़ रहे थे उसके ऊपर जाकर के कतरे गिरे। फस यकफी का हमोगवा, फस यकफी का हमोगवा के अंतरीब अल्लाह ताला तुम्हारे लिए काफी हो जाए, तुम्हें किसी की जरूरत नहीं रहेगी, अल्लाह ताला आपके लिए काफी है, ठीक है ना। अल्लाह ताला ने तो कुरान मजीद के अंदर नबी अलैहिस्सलाम को खिताब फरमाया था, लेकिन यही चीज जो है उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु के लिए भी गोया के पूरी हो गई। ये कुरान मजीद जो है वो आज भी म्यूजियम के अंदर गालिबन टॉप कापी म्यूजियम में है या वहां पर है, ठीक है, वहां पे मौजूद है। उसके ऊपर उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु के खून के कतरे भी मौजूद, ठीक है। तो इस तरह से उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु की शहादत हुई। हजरत नायला रज़ी अल्लाह अन्हा ने आगे बढ़ करके रोकने की भी कोशिश करी ना, तो इन लोगों ने जो वार किया था उससे उनकी उंगलियां भी कट गई। बहरहाल इस तरह से हजरत उस्मान ज़िन्नौरैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दुनिया से रुखसत हुए, और फिर उसके बाद लंबा वाक़या आगे चलता है, वो हम इंशाल्लाह आगे पढ़ेंगे, बाद में पढ़ेंगे। तो जब तफ्तीश वगैरह शुरू हुई और लोग आए, उस्मान हजरत नायला रज़ी अल्लाह अन्हु से भी पूछा कि भाई आपने उन लोगों को देखा था तो आपने उनको पहचाना, तो उन्होंने बताया लोगों को कि मोहम्मद बिन अबू बकर भी थे, लेकिन ऐसा हुआ तो फिर वो चले गए, ही वॉज नॉट पार्ट ऑफ इट एनी मोर। लेकिन बाकी जो लोग थे ना वो मदीना मुनव्वरा के रहने वाले लोग भी नहीं थे, मैं उनको नहीं पहचाना, ठीक है। उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु की जो पर्सनालिटी थी उसके बारे में तो हम तफसील से पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन आगे हम चंद बातें और अगली क्लास के अंदर करेंगे। अभी जो है वो बेहतर है कि हम लोग और टॉपिक शुरू ना करें, लेकिन ये इनके ऊपर जो है ना वो लोगों ने काफी सारे इल्जाम लगाने शुरू किए थे। उस जमाने में भी इल्जाम लगे और बाद में भी जो है ना वो लोग आज तक ऐसे लोग मौजूद हैं जो कि उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु के ऊपर इल्जाम लगाते हैं कि उन्होंने ये गलत किया, उन्होंने वो गलत किया, ठीक है। तो ये एक तरह से जो है ना वो दीन इस्लाम के अंदर कहते हैं कि ये एक सियासी फितने का आगाज था उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु के जमाने से, ठीक है। उससे पहले जो है ना ये सियासी फितने जो है वो शुरू नहीं हुए थे, और ये जो फितना शुरू हुआ है तो फिर ये उसके बाद चलता रहा है, चलता रहा है, ठीक है। और आज तक इस तरह के फितने जो है वो मौजूद है। अब इसके ऊपर जो है ना वो अगरचे कि ये चीज किताब में नहीं है, तो हम अगली दफा पढ़ेंगे, लेकिन इसके ऊपर आखिरी बात करके खत्म करते हैं कि लोग इसके ऊपर एतराज करते हैं कि भाई ये क्या बात हुई, है भाई ये क्या बात हुई कि मुसलमानों के नबी जो हैं वो दुनिया में आए, उन्होंने जो है वो दुनिया के अंदर जो है वो अपना दीन कायम किया और इतना अच्छा जो है वो निज़ाम बनाया, और ये निज़ाम जो है वो बस थोड़े से साल चला और उसके बाद जो है उसके अंदर फितने शुरू हो गए, मुसलमान जो है वो आपस में लड़ना शुरू हो गए, और जो है ना ये वैसे हो गया और ये वैसे हो गया, ठीक है। तो अब ये जो है ना वो लोग इस तरह का एतराज करते हैं, गैर मुस्लिम भी करते हैं और कुछ जो है वो गलत कम समझ रखने वाले, कम इल्म रखने वाले मुसलमान भी इसी के अंदर शामिल हो जाते हैं, ठीक है ना। और अक्सर मुसलमानों के पास कोई जवाब नहीं होता इसका, ठीक है, अक्सर मुसलमानों के पास इसका कोई जवाब नहीं होता, और लोग जो है ना वो शक में पड़ जाते हैं कि हाँ वाकई यार ये तो सही कह रहे हैं, फायदा ही क्या हुआ, इतना अच्छा दीन, इतने अच्छे लोग, और जो है वो लड़ाइयां शुरू हो गई और फितने शुरू हो गए, हत्ता कि जो है वो दूसरे ही खलीफा को जो है वो शहीद कर दिया गया, और तीसरे खलीफा को जो है वो शहीद कर दिया गया, और चौथे खलीफा को ही शहीद कर दिया गया, ये तो बात ना बनी भाई। ये तो जो है वो अच्छी बात नहीं है, ये किस किस्म का दीन हुआ, ठीक है ना। तो इसका जो है वो हमें जवाब अच्छी तरीके से समझना चाहिए और हमें बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। बस है थोड़ा सा मुश्किल, आप कम उम्र लोगों के शायद समझ में ना आए, थोड़ी सी बड़ी उम्र के मतलब बच्चों के समझ में शायद आ जाए। ये बात याद रखें कि दीन इस्लाम का मकसद जो है ना वो ये है ही नहीं कि दुनिया के अंदर एक कामयाब पॉलिटिकल सिस्टम जिसके अंदर किसी किस्म के कोई फ्लॉज ना हो उसको ला करके एस्टैब्लिश कर। दीन इस्लाम का ये मकसद है ही नहीं, ठीक है ना। जब आप अगर गलत समझना शुरू कर दें कि किसी का, आप फॉर एग्जाम्पल गलत स्टैंडर्ड सेट कर लें किसी चीज के लिए, ठीक है ना, कि भाई इसकी कामयाबी का स्टैंडर्ड ये है कि ये अचीवमेंट करे, ये वाली अचीवमेंट करे, तो फिर क्या होगा कि अगर वो वाली अचीवमेंट ना करे तो फिर आप कहेंगे यार ये तो फेल हो गया इसका मतलब, ठीक है ना। मिसाल के तौर पर आप मैथ का एग्जाम, मैथ के जो है ना वो तैयारी कर रहे हैं कि आप एग्जाम देंगे, सही है। तो अब मैथ के एग्जाम में कामयाब होने का स्टैंडर्ड क्या होता है कि जब आप फाइनल एग्जाम जा करके देंगे ना तो उसके अंदर आपके जो है वो ए प्लस ग्रेड आना चाहिए। ये स्टैंडर्ड लोगों ने सेट किया हुआ कि भाई ए प्लस ग्रेड आएगा उसका मतलब यह है कि ही वॉज कंप्लीटली सक्सेसफुल इन मैथ, राइट, फ्लाइंग कलर से जो है वो पास हुआ, सही है। तो अब एक लड़का जो है या कोई बच्ची जो है वो पास पेपर्स से अच्छी सी तैयारी कर ले, पास पेपर्स को सॉल्व करें, ठीक है ना, और मैथ के जो है वो सारे कॉन्सेप्ट वगैरह ना समझे। अब वो जब एग्जाम में बैठा तो क्या हुआ कि जो एग्जामिनर ने पेपर बनाया था तो उसके अंदर जो है ना वही वाले सवाल आ गए जो उसने पहले से किए हुए थे, ठीक है ना, उसने पहले से सॉल्व किए हुए थे क्योंकि पास पेपर समझते हैं आप लोग, ठीक है, जो कि एग्जाम देने वाले हैं, तो उसने पास पेपर्स की तैयारी करी थी। हम कहते हैं तुक्का लग गया, राइट, और पेपर के अंदर जो है वो एग्जाम के अंदर वही वाले क्वेश्चंस आ गए जिसकी इसने तैयारी करी थी, बाकी इसने कुछ नहीं पढ़ा था, तो इसके जो है वो ए प्लस जो है वो ग्रेड आ गया, ठीक है। अब जो है ओ हो, ये तो कामयाब हो गया, ये तो बेस्ट अचीवर है, इसको तो गोल्ड मेडल मिलेगा, इसको तो फलाना मिलेगा, तोहफे मिलेंगे वगैरह है। और दूसरा जो बच्चा है ना तो उसने जो है वो खूब मेहनत करी, सारे कॉन्सेप्ट समझे और दिन रात जो है वो प्रैक्टिस करता रहता था, और उसने कहा कि भाई मैं तो पूरी बुक की तैयारी करूंगा, मैं पास पेपर से खाली क्यों तैयारी करूं, ठीक है ना। तो उसने बहुत मेहनत करी, बहुत समझा बातों को, लेकिन एग्जाम के अंदर जो है वो कोई ऐसा मसला उसके साथ बन गया, मिसाल के तौर पर बीमार पड़ गया। बीमार पड़ सकते हैं, पहले से कोई तो लिखा हुआ कहते आज मेरे एग्जाम में प्लीज मुझे बीमार कोई नहीं करे, ये कोई आप एग्रीमेंट करके आते हैं किसी के साथ, अल्लाह ताला के साथ में, मुझे बीमार नहीं कीजिएगा, भाई बीमार पड़ गए, कोई और मसला बन गया, ऐसी चीज हो गई कि भाई अदरवाइज यू आर वेल प्रिपेयर्ड, लेकिन जब एग्जाम हॉल में बैठे ना उस वक्त जो है वो दिमाग काम नहीं कर रहा, खुदा ना खास्ता कोई हादसा हो गया घर के अंदर, फैमिली के अंदर कोई बड़ी ट्रेजेडी हो गई, अब यू आर अंडर सो मच स्ट्रेस कि आप सारी तैयारी करने के बावजूद एग्जाम पेपर को नहीं लिख पाए, तो क्या होगा उसके बाद, अब आपका जो है वो बी आएगा ज्यादा से ज्यादा, राइट, या सी आ जाएगा, या आप जो है वो मकबूल पास हो गए बस। तो आप जो वो स्टैंडर्ड सेट किया गया था कि जी ए प्लस ग्रेड आएगा तब ये बंदा कामयाब है, ए प्लस ग्रेड नहीं आएगा तो कामयाब नहीं है, तो इस स्टैंडर्ड के ऊपर जब इस बच्चे को मेजर किया जाएगा तो क्या कहेंगे, नाकाम हो गया ना, फेल हो गया ना, ठीक है। लेकिन क्या वो वाकई फेल हो गया, नहीं, वो वाकई कोई थोड़ी फेल हुआ है भाई, मकसद तो होता है इल्म हासिल करना, बात को समझना, कॉन्सेप्ट को क्लियर करना, एग्जाम में खाली ग्रेड लेकर के आना ये तो हमारा मकसद नहीं है, हमारा मकसद इल्म है। हाँ ग्रेड्स आ गए अच्छी बात है भाई, ठीक है आ गए, राइट, हाँ आगे किसी को बता देंगे हाँ भी हमारे अच्छे ग्रेड्स आ गए थे, लेकिन ये मकसद तो नहीं है ना। लेकिन अगर आपने अपना स्टैंडर्ड यही सेट कर लिया तो फिर तो ग्रेड्स इज व्हाट मैटर्स, यही बात जो है वो दीन इस्लाम के बारे में भी लोगों ने सेट कर ली है कि भाई दीन इस्लाम की कामयाबी ये है कि दुनिया के अंदर जो है ना वो जबरदस्त किस्म का, फ्लॉलेस किस्म का जो है वो पोलिटिकल सिस्टम बन जाए जिसके अंदर किसी किस्म की कोई लड़ाई नहीं हो चाहिए, किसी किस्म की कोई जो है वो इश्यूज नहीं होने चाहिए, ये है इसका मकसद। तो भाई जाहिर सी बात है कि जब वो लोग ये देखेंगे कि फलाने खलीफा को शहीद कर दिया गया, फलाने को शहीद कर दिया गया, इनके दरमियान लड़ाई हो गई, तो वो तो यही कहेंगे ना कि दीन इस्लाम नाउज बिल्ला नाकाम हो गया। लेकिन हम इसका जवाब ये देते हैं कि नहीं, हरगिज नहीं, ये दीन इस्लाम का मकसद है ही नहीं। कि दुनिया के अंदर जो है वो उसको एस्टैब्लिश किया जाए। इलाही कलिमतुल हक कहते हैं ना, नहीं, इलाही कलिमतुल हक का मतलब ये है ही नहीं कि दुनिया के अंदर एक हुकूमत कायम की जाए। अगर हुकूमत कायम करना दुनिया इस्लाम का मकसद होता तो वो सारे के सारे सहाबा जो कि मदीना मुनव्वरा में रियासत मदीना एस्टैब्लिश होने से पहले दुनिया से चले गए, तो वो क्या नाकाम हो गए? क्योंकि उन्होंने तो एस्टैब्लिश नहीं किया दुनिया के अंदर रियासत मदीना। या रियासत मदीना जो है वो जब दीन मुकम्मल हो गया तो वो तो जा करके फतेह मक्का के मौके पर हुआ, तो उससे पहले जो हमजा रज़ी अल्लाह तआला दुनिया से चले गए और इतने दूसरे सहाबा जो चले गए, तो वो क्या सारे के सारे नाकाम हो गए कि वो काम ना कर सके? हरगिज़ नहीं। तो भाई दीन की कामयाबी क्या है? दीन की कामयाबी ये है कि जो मुसलमान शख्स है ना वो अल्लाह ताला को राजी करके इस दुनिया से चला जाए, ये कामयाबी है। ठीक है ना? तो दीन इस्लाम की कामयाबी एक्चुअली इंडिविजुअल मुसलमानों की कामयाबी है। ठीक है ना? अगर मुसलमान कामयाब हो गया बस कामयाब। ठीक है ना? चाहे कोई सिस्टम स्टैब्लिश हुआ चाहे कोई सिस्टम स्टैब्लिश नहीं हुआ। अब आपने जो है मुस्लिम हीरोज की क्लास के अंदर कितने बड़े बड़े अकाबरीन के वाकयात पढ़े हैं ना, उनमें से एक हजरत शाह सैयद अहमद शहीद रहमतुल्लाह, याद है ना, सैयद अहमद शहीद रहमतुल्लाह, उन्होंने कितनी बड़ी जो है वो मुहिम चलाई थी अंग्रेजों के खिलाफ और सिखों के खिलाफ, राइट? लेकिन क्या हुआ, वो मुहिम खत्म हो गई ना, दुनियावी एतबार से देखा जाए तो वो नाकाम हो गए। वो अपने मकासद जो स्टैब्लिश करना चाहते थे, इस्लामी हुकूमत इंडिया के अंदर अंग्रेजों को बाहर निकालना चाहते थे, रंजीत सिंह को जो है वो हराना चाहते थे, ही वॉज नॉट एबल टू अचीव एनी ऑफ दैट। तो क्या हम ये कहेंगे सैयद अहमद शहीद रहमतुल्लाह नाकाम हो गए? नो, हरगिज नहीं, वो नाकाम हो, क्योंकि वो अल्लाह ताला के यहाँ कामयाब हो गए। उन्होंने बंदगी के साथ जिंदगी गुजारी, बल्कि उनको शहादत की मौत भी नसीब हो गई, ये तो कामयाबी है ना, राइट? रज़ियल्लाहु अन्हु वरज़ू अन्हु, राइट? कामयाबी क्या है? सूरह फजर की आखिरी आयत क्या?
ये तो
सूरह फजर की या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना ارجعي الى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنة। ये है मुसलमान की कामयाबी, है ना? दिस इज ऑल दैट मैटर्स टू अस। चाहे दुनिया के अंदर आप स्टैब्लिश कर पा रहे हो नहीं स्टैब्लिश कर पा रहे हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है? तो हर मुसलमान जो ऐसी जिंदगी गुजारता है जिसको बंदगी वाली जिंदगी कहते हैं और जिसकी मौत ईमान के ऊपर आती है, वो कामयाब हो गया, और यही दीन इस्लाम की कामयाबी। ठीक है? तो हम किसी भी ऐसे शख्स को यही जवाब देंगे कि भाई आप जो है ना वो बात ही नहीं समझे असल, आपने बस अपने जहन के अंदर जो है ना वो गलत लोगों की बातें सुन सुन करके अपना एक तसव्वुर बना लिया है, आप उसको ठीक करें। यू नीड टू लर्न एंड फिक्स योर ओन कॉन्सेप्ट। ठीक है? आप उसको ये जवाब दें, बिल्कुल भी इससे परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है? यहाँ पे हम अपनी क्लास खत्म करते हैं। क्या ये लोग बाद में जाके खवारिज निकले? ये लोग बाद में जाके खवारिज निकले, मोस्ट लाइकली यही लोग जिन्होंने के फितना इस वक्त शुरू किया था, यही फिर जो है ना वो आगे जा करके या तो रवाफिज की शक्ल इख्तियार कर गए या खवारिज की शक्ल इख्तियार कर गए। लेकिन इनका एग्जैक्टली नहीं पता कि फलाना बंदा उसने आगे क्या किया, फलाना बंदा उसने आगे क्या किया। तो आपके सवाल का जवाब मेरे पास इस तरह से क्लियरली नहीं है। ठीक है? वाखिरु दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। खैर, अस्सलाम वालेकुम।